बहरहाल एक तरफ शादियां हैं, तो अगला वाक्य जो था वो मुहासरा है बनू कैन का। अब यहां से जंगों का एक बड़ा सिलसिला शुरू होगा यहूद के खिलाफ। तीन कबाइल थे जिसमें बनू कैनका ने बहुत तंग किया हुआ था मुसलमानों को। तो शवाल के वस्त में या जीकात के शुरू में 2 हिजरी में बनू कैनका के साथ एक मामला हुआ। आप देखेंगे पर्सनल जिंदगी और जंगी या कह लीजिए कि लीडरशिप की जो जिंदगी के वाकया थे वो साथ साथ आएंगे। तो इसी साल में नबी सल्लम का निकाह हजरत हफ्सा से हुआ, जो कि हजरत उमर की बेटी थी, सन 3 हिजरी में। और आपको पता है कि हजरत हफ्सा जब बेवा हो गई तो हजरत उमर ने रिश्ता मांगा 2-3 सहाबा से, जिसमें एक अबू बकर भी थे, लेकिन अबू बकर ने इनकार किया। तो हजरत उमर को बड़ा गुस्सा था कि मेरी बेटी से निकाह नहीं कर रहे, लेकिन बाद में पता चला कि अल्लाह के नबी का निकाह उनसे होना था। सुभान अल्लाह। बहरहाल फिर सन 3 हिजरी के वाक्या तब हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें हजरत उस्मान और उम्मे कुलसूम का निकाह हुआ। पहले फातिमा का हुआ, तो अब हजरत उस्मान और उम्मे कुलसूम का सन 3 हिजरी में हुआ। बेटियों के बाप होकर भी इतने काम कर रहे थे दीन के, एक साल एक बेटी की शादी की, अभी तो कमर ही दोरी हुई, अब दूसरी की आ गई, कमाऊं क्या करूं। लगता है आपको अल्लाह के नबी की जिंदगी और हमारी जिंदगी में कोई चीज कॉमन है? अल्लाह ताला हमें आप जैसा बना दे। बहरहाल सन 3 हिजरी का अहम वाक्या शराब की हुरमत का इब्तदाई हुक्म नाजिल होता है। फिर सन 3 हिजरी में काब बिन अशरफ, जो यहूद का बहुत बड़ा सरदार था, ये अपने इंजाम को पहुंचा। सन 3 हिजरी का एक बड़ा खूबसूरत वाक्या हजरत हसन पैदा हुए रदी अल्लाहु अन्हो। और सन 3 हिजरी का अगला वाक्या गज़वे उहद, 5 शवाल 3 हिजरी में नमाज़े जुमा के बाद मदीना से रवाना हुए, और शवाल बरोज़ शंबा जंग हुई। और इसके बाद हमराउल असद नाम का एक मार्का हुआ। ये दोनों वाक्या सूरत आले इमरान में आगे पीछे ही आते हैं। फिर इसी तरह लश्कर अबू सुफियान का पीछा किया गया, लेकिन वहां से वो बच गए, लेकिन मुसलमानों को बहुत फायदा हुआ, ये हमराउल असद है। उसके बाद सन 3 हिजरी के वाक्यात में एक और वाक्या सूद की बारे में इब्तदाई हुक्म नाजिल होता है। गज़वे उहद के आयतों में आता है ना, ला ताकुलु रिबा अदाफा मुदाफा, यानी इब्तदाई हुक्म। सूरत आले इमरान आयत 130 लिख लें रेफरेंस में, यानी इब्तदाई नसीहत दी कि सूद छोड़ दो। फिर उसके बाद यतीमों के बारे में अहकामात गज़वे उहद के बाद नाजिल हुए। फिर सन 3 हिजरी में विरासत के बारे में कानून जारी हुआ। सन 3 हिजरी में एक और कानून पास होता है कि मुशरिक औरतों से निकाब नहीं हो सकता, और शौहर बीवी के हकूक और कानूनी इकदाम ये मुरतब हुए। आप देख रहे हैं कि ये किस्म का मुस्लिम लॉ डिवेलप हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम लॉ की चीजें बन रही हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाक्या सन 3 हिजरी का नबी सल्लम का निकाह हजरत जैनब बिनते खुजैमा से हुआ, जिनको उम्मुल मसाकीन भी कहते हैं। क्यों हुआ था ये, अब आपने थोड़ा सा सोचना है, तो मैं आपको अभी से बता दूं ये क्या हो रहा है। हर 1-2 साल के बाद आपका एक निकाह हो रहा है, तो भाई पीछे क्या था? 25 साल की उम्र का एक मर्द 40 साल की औरत से निकाह कर रहा है। कितने साल उस औरत के साथ रहते हैं? हजरत खदीजा के साथ। 25 में आप डालिए 3, 15 और 10, 25 साल हजरत खदीजा के साथ रहे, कोई दूसरा निकाह नहीं। और अपनी उम्र मुबारक 52-53 साल की हो गई है, कोई दूसरा निकाह नहीं। तो फिर तो उम्र तो वही होती है बीवियां करने की। हर शादी के पीछे हिकमत थी। हजरत अबू बकर की बेटी से निकाह क्यों हुआ हजरत आयशा? क्योंकि उस दौर में लोग मुंह बोले भाई की बेटी से निकाह हराम समझते थे, तो हजरत अबू बकर मुंह बोले भाई थे। हर चीज के पीछे रीजन है। इस पे एक लेक्चर भी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियों के नाम पे। और कुछ नहीं तो सूरत अल अहज़ाब की जाके तफसीर सुन लें, सबीरुल जन्ना में आपको ये सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, अगर वाकई आपके जहन में कोई क्वेश्चन है। इसी तरह ये जो निकाह हो रहा है हजरत जैनब से, इसके पीछे क्या है? ओहद के दिन बेवा हुई, इद्दत 3 हिजरी में पूरी हुई, और बाद में अल्लाह के नबी को इस बेवा औरत से निकाह का हुक्म दिया गया, तो इनका निकाह अल्लाह के नबी से हुआ। फिर उसके बाद सन 4 हिजरी अब शुरू होता है, रजी का हादसा हुआ। सुना होगा आपने इसका नाम, 70 हुफाज को धोखे से कत्ल कर दिया था दुश्मनों ने ये कहा कि भेजें जरा हमारे पास तबलीग के लिए अपने लोग, आपने सब अच्छे अच्छे सहाबा जो इल्मी शख्सियात थे उनको भेजा, लेकिन उन्होंने धोखे से मार दिया। उनके साथ ये मामला सफर के महीने में हुआ था, सन 4 हिजरी में। फिर इसके बाद रबीउल अव्वल 4 हिजरी में गजवा बनू नज़ीर हुआ, ये यहूद का दूसरा कबीला था, और 4 हिजरी के मिडल में जैनब बिनते खुजैमा का इंतकाल हो गया। कितने महीने आपकी जौजियत में रही हैं आपको पता? सिर्फ 2 से 3 महीने, और इनकी डेथ हो गई, उम्र की भी बड़ी थी। उसके बाद ये यकम ज़ीकात 4 हिजरी जुमे के दिन हिजाब का हुक्म नाजिल हुआ। सुभान अल्लाह। फिर हिजाब का हुक्म नाजिल हुआ 4 हिजरी में जुमे के दिन, और फिर शराब की हुरमत का कतई हुक्म 4 हिजरी में नाजिल हुआ। फिर गजवा बदरुल उखरा, दूसरी बदर, ये पहली तो गुजर गई, ये जीका 4 हिजरी में हुआ। असल में अबू सुफियान ने चैलेंज किया था लेकिन मुकाबले पर नहीं आए। फिर इसके बाद गजवा दूमतुल जुंदल हुआ रबीउल अव्वल 5 हिजरी में। अब यहाँ से 5 के वाक़ात शुरू हो रहे हैं, और आप ये तरतीब से देखेंगे इंशाल्लाह आपको बाद में कई चीज़ें समझ आएंगी। अभी सिर्फ लिख रहे हैं ना, बाद में आपका इससे जहन बहुत खुलेगा अल्लाह ने चाहा। फिर उसके बाद 5 हिजरी में तयम्मुम का हुक्म नाजिल हुआ। गजवे बनु मुस्तलक के सफ़र में थे, हार गुम गया हज़रत आयशा का, फिर उसी दौरान नमाज का वक्त आया तो तयम्मुम की आयतें उतरी। फिर नबी सल्लम का निकाह हज़रत जुवैरिया से हुआ शाबान 5 हिजरी में। हज़रत आयशा पे तोहमत लगती है जिसको वाकिफ कहते हैं, शाबान 5 हिजरी में। जिना और कज़फ, जिना तो समझते हैं, कज़फ होता है किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाना जिना का, और लियान, लियान होता है शौहर बीवी का एक दूसरे पर लानत करना, तो इसके कवानीन 5 हिजरी में नाफिज हुए, यानी मुस्लिम लॉ में ये चीज़ें शामिल हो गई। और इसी तरह पर्दे के तफसीली अहकाम वाकिफ के बाद हुए। 5 हिजरी का एक बहुत मारूफ वाकया गज़वा अहज़ाब है जिसको खंदक कहते हैं, शवाल या ज़ीक़ाद में हुई। फिर इसी तरह वफद दौस की मदीना में आमद हुई 5 हिजरी को। ये क्यों इतना अहम है? 70-80 मुसलमान ख़ानदानों का एक अजीम वफद था, यानी एक ग्रुप की सूरत में बहुत सारे लोग आए थे मुसलमानों के पास। फिर इसके बाद 5 हिजरी का नेक्स्ट वाक़या बनु कुरैज़ा की तरफ नबी सल्लम ने साथियों को भेजा 5 हिजरी में। फिर 5 हिजरी का एक और वाक़या ज़ैनब बिनते जहश से आपका निकाह हुआ। वो ज़ैनब बिनते खुज़ैमा थी, ये हैं वो जो हज़रत ज़ैद के निकाह में थी। 5 हिजरी में निकाह हुआ। फिर उसके बाद 6 हिजरी के वाक़या देखिए, बड़ा प्यारा वाक़या है। पहला ही सुमामा बिन असाल मुसलमान होते हैं, सुनो मैं वाक़या इनके कबूल इस्लाम का। बहुत इस्लाम से चिढ़ थी इनको, एक जंग में कैदी बनाकर लाए गए, मस्जिद नबी के पिलर में बांध दिया गया। अल्लाह के नबी वहां से गुजरे, आपने स्माइल दिया, सुमामा ने मुंह फेर लिया, आपने कहा जरा इनकी रस्सियां ढीली कर दो, ये अपनी कौम का सरदार है, इसकी अच्छी इज्जत करो। 3 दिन तक नबी सल्लम उसके पास जाते रहे और उसको दावत देते रहे इस्लाम की, और वो आपकी दावत को झुठलाता रहा, और आखिर में यही कहता था, छोड़ देंगे तो बहुत अच्छे शख्स को छोड़ेंगे, और मुझे मार देंगे तो मेरी कौम आके बदला ले लेगी। यानी नफरत और रौनक थी। 3rd दिन अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया, जाओ सुमामा को आज़ाद कर दो। और सुमामा वहाँ से निकले, करीब के किसी कुएं या चश्मे से गुसल किया, वापस आए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब क्या हुआ भाई, अब तो छोड़ दिया। कहा छोड़ के तो अपने कैदी बनाया। सिर्फ 3 दिन तक कहते हैं मस्जिद नबी में जो आपके और सहाबा के मामूलात देखे, उसको देखकर उनके दिल में इस्लाम की मोहब्बत आ गई, और रईस से नजद के फौरन ऐलान किया, आज के बाद मक्का वालों को एक दाना नहीं गल्ले का देंगे। उधर कहत पड़ा हुआ है। फिर अबू सुफियान और दूसरे साथियों ने अल्लाह के नबी को मैसेज भेजा कि खुदा के लिए सुमामा से कह के हमारा नाचना बंद करे, और अल्लाह के नबी की फिर सिफारिश पे इसने वापस दिया। तो ये बातें कहने की, ये वाकयात अपनी जगह, इनके अंदर आपका इखलाक भी दिखता है, आपका किरदार भी दिखता है। बहरहाल सन 6 हिजरी का एक और बहुत खूबसूरत वाकया सुलह हुदैबिया, मुआहदा हुआ था ज़ीकात के महीने में, ये भी अपनी जगह एक बड़ी खूबसूरत कहानी है। सूरह फतह की तफसीर में आप इसको सुन सकते हैं। फिर उसके बाद हुदैबिया से ज़िलहज 6 हिजरी में आप मदीना वापस आते हैं। फिर 6 हिजरी के वाक़यात में बहुत खूबसूरत दो शख्सियात इस्लाम में दाखिल होती हैं, किसी को पता? खालिद बिन वलीद, सैफुल्लाह का लकब है उनका, और अमर बिन अलास, ये दोनों सहाबी मुसलमान होते हैं। फिर इसी तरह से 7 हिजरी के वाक़यात में यकम मुहर्रम, 7 हिजरी इसलिए अहम है कि बैनुल अक़वामी यानी आउटसाइड द मदीना दावत का आगाज़ हुआ। आपने बादशाहों के नाम ख़त लिखे, ये भी एक अहम बात थी क्योंकि हुदैबिया की सूरत में अब जंग तो होनी नहीं थी, तो आपने दावत पे काम किया। फारिग नहीं रहते थे अल्लाह के नबी, ये तो बात सच है। और मैंने ये चीज़ सीरत से सीखी है, ये नहीं तो वो नहीं तो ये, इस तरह नहीं तो उस तरह, उस तरह नहीं तो इस तरह। एक भी दिन आपका गफलत में नहीं गुजरना चाहिए, वरना दूसरा दिन उससे भी ज़्यादा गाफिल हो जाएंगे। बहरहाल खतूत लिखे, मुख्तलिफ रिस्पॉन्स आए। 7 हिजरी के वाक़यात, गज़वा खैबर हुआ, बड़ा खूबसूरत गज़वा, तो उसके बाद मुसलमानों के चूल्हे जल पड़े। 7 साल तंगी तुर्शी के गुजरे, लेकिन फिर खैबर की ज़मीनें जब मुसलमानों को मिली तो फिर अनाज और गल्ला और बहुत माल आया। फिर नबी सल्लम का निकाह हज़रत सफ़िया से 7 हिजरी में मुहर्रम के महीने में हुआ। पता चला कि मुहर्रम के महीने में निकाह हो सकता है। हज़रत सफ़िया मतलब यहूदी सरदार की बेटी थी, इंतहाई खूबसूरत थी। हज़रत आयशा से इनका तकाबुल रहता था अक्सर। बहरहाल ये आपके हरम में आई। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हुआ वो क्या था कि मुसलमानों के इनसाइड कुछ छोटे छोटे मामलात हुए थे, जैसे मुराजत हुई थी मुहाजरीन ने हबशा फतेह हैबर के बाद, यानी फतेह खैबर के बाद कुछ लोग हबशा से मदीना में आ गए थे, ये भी 7 हिजरी में हुआ था। फिर इसी तरह से सुलह देबिया के सूरत में माहदा भी हो रहा था, तब वो जुंदल नाम के एक शख्स जंजीरें तुड़वा के आ गए थे, लेकिन नबी सल्लम ने उनको वापस भेज दिया था। याद है वाक्या, उनको और अबू बसीर दो लोग थे, इन दोनों ने फिर वहां जाकर एक पूरा मुस्लिम कैंप, यानी कह लीजिए कि एक आजाद मुस्लिम कैंप कायम हुआ 7 हिजरी में, जहां फिर मुसलमानों को मदीना से बाहर भी इस्लाम की तबलीग की जाती थी। फिर इसके बाद कुछ और वाकयात हुए। सैफुल बाहर का काफिला था, उमरतुल कजा किया आपने 7 हिजरी को, यानी हुदैबिया के मौके पर रोक दिए गए, लेकिन अगले साल जाकर आपने उमरा किया। इसी तरह 7 हिजरी में निकाह और तलाक के कवानीन मुकरर हुए, और नबी सल्लम का निकाह हजरत मैमूना से हुआ मक्का में। 7 हिजरी में जबला गस्सानी का इस्लाम कबूल करना, यह भी एक बड़ी मारूफ शख्सियत थी जो मुसलमान हुई। जमादिय लूला 7 हिजरी में गजवा मौता हुआ, और रजब 8 हिजरी में मुशरिकीन मक्का की तरफ से हुदैबिया के माहदे की खिलाफ वर्जी हुई। और अब हम कूदते हैं 8 हिजरी के वाकयात पे। क्या हुआ था 8 हिजरी को? सच्ची बताऊं, ये वाकयात हमें उंगलियों पे, ये हमारी हिस्ट्री है, मुस्लिम हिस्ट्री जी। गजवा फतेह मक्का कब हुई होगी भला? 10 रमजान, 8 हिजरी। क्यों भाई, ये रमजान ही में क्यों? आपने मैंने इस रमजान में क्या तीर मारा? हमने क्या फतह किया? अपने नफ्स को फतह किया, सुस्तियों को छोड़ा है, दिल के शक और कीने दूर किए हैं, गीबतें छोड़ी हैं। वो इतने बड़े बड़े काम रमजान में कर लेते थे, हम अपने ही जिस्म और अपने ही दिल दिमाग से फारिग नहीं होते। अल्लाह ताला हमारी इसलाह फरमा दे। बहरहाल 20 रमजान को आप फातह बनकर मक्का में दाखिल हो गए। इन्ना फतहना लक फतह मुबीना। और बाज़ रिवायत में आता है कि 18 रमजान तक मदीना में थे, तो दाखला मक्का में जो हुआ वो 29 या 30 को हुआ, यानी 10 दिन लगे थे आपको मक्का से मदीना सफर के दौरान। फिर इसी तरह एक सरिया हुआ था 25 रमजान को, जिसमें उज्जा नाम की एक देवी जो थी उसका मंदिर ढाया गया था, ये भी 8 हिजरी में हुआ। हजरत खालिद बिन वलीद को आपने भेजा, बड़ा दिलचस्प वाक्य, बेहोश हो गए जाके, लोगों ने कहा देखा इस देवी ने इनको मार दिया, तोड़ के अपने कपड़े झाड़ के करे कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो ऐसे खेल रहा था। मैं सोचती हूँ जंगों में जाते थे और इतने जॉली मूड में होते थे, हम पढ़ने आते हैं, हम रो रहे होते हैं, हम खाना पका रहे होते हैं, हम दुपट्टा सर को बांधा होता है, कपड़े धो रहे होते हैं, सी रहे होते हैं, हर वक्त अवाजार बेजार, पता नहीं क्या जार हमें हो क्या गया। हमारी जिंदगी में वो एसेंस नहीं दिखता जो आपको सहाबा और नबी सल्लम की जिंदगी में दिखता है, और ये ईमान से मिलता है। ईमान इंसान को मोटिवेट करता है। अल्लाह ताला हमारी इसलाह फरमाए। फिर इसी तरह सन 8 हिजरी में आपने एक और बुत था, उधर हजरत अमर बिन अलास को भेजा कि सुवा नाम का एक बुत था, वो भी उनकी देवियों और बुतों में मतलब बड़ा मारूफ था, उसको गिराने के लिए भेजा। फिर इसी तरह रमजान 8 हिजरी में आपने एक और मनात नाम का बुत था, उसका बुतखाना गिराने के लिए भेजा। और इस तरह 9 शवाल तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में रहे, यानी रमजान में गए तो शवाल में, बास कहते हैं 18 को, बास कहते हैं 8 को। इसके बाद गजवे हुनैन है, शवाल के महीने में 8 या 10 दिन की मुद्दत में हुआ। ताइफ पहुंचने तक मुहासरा हुआ ताइफ का, ये भी एक वाक्या है, यानी एक मुहासरा था शवाल और ज़ीकात के बीच में। फिर इसी तरह 8 ज़िलहज के वाक्यात में ज़िलक़ादा में जेराना नाम की एक जगह पर तकसीम हुई गनीमत की, और उमरा किया गया। फिर इसी तरह सूद का कतई हुक्म 8 हिजरी में फतेह मक्का के मौके पे राइज हो गया। अल्लाह ने पिछले सारे कानून ख़त्म कर दिए। 8 हिजरी में वफद सदा आया और हज़रत ज़ैनब बिनते नबी सल्लम का इंतकाल हुआ, यानी आपके एक बेटी का इंतकाल 8 हिजरी में हो रहा है। 8 हिजरी में ही आपके एक बेटे इब्राहिम का इंतकाल होता है। 1 साल में 2 बच्चों का गम, फिर भी अल्लाह के नबी ने काम नहीं छोड़ा, फिर भी आप उसी जोश के साथ लगे रहे। अल्लाह हमें भी ज़ाती दुखों और खुशियों से बेनियाज कर दे, तभी कुछ कर सकेंगे, वरना तो मुहाल है। फिर इसी तरह 9 हिजरी शुरू होता है, अब आपकी ज़िंदगी का आखिरी से 1 साल पहले। इब्तदा मुहर्रम से होती है, आप सब जानते हैं। तंजीम ज़कात का कानून बना, यानी आपने बकायदा ऐसी तंजीम बनाई कि लोग ज़कात जाके वसूल करते थे और उनको रखा। और फिर और क्या हुआ था 9 हिजरी में, ये आप मुझे बताएं, खास तौर पे कुरान वाले। शाबाश। रजब 9 हिजरी, नवंबर 635 ईस्वी बनता है, गज़वे तबुक के लिए रवानगी, जैशुल उसरा, मदीना से रवानगी जुमेरात को हुई, सोचिए ज़रा। फिर यहाँ जिजिए का हुक्म इसी दौरान नाजिल हुआ, तबुक के ज़माने तक। बाज़ कहते हैं 8 हिजरी में तबुक से पहले ये नाजिल हो चुका था। फिर गज़वे तबुक से वापसी पे मस्जिद ज़रार को जलाया गया, ये भी आप सूरह तौबा में पढ़ते हैं। फिर इसी तरह उकैदर, उकैदर या कीदर नामी एक शख्स था दूमतुल जुंदल का हाकिम, वो मुसलमान होता है 9 हिजरी में। काब बिन जोहैर तलब किया गया, माफ़ी मांगी उसने, आपने माफ़ किया, फिर वो मुसलमान हुआ 9 हिजरी को। फिर इसने एक कसीदा लिख कर नबी सल्लम को दिया, बड़ा खूबसूरत। और इसी तरह सन 9 हिजरी में वफूद, आमुल वफूद कहते हैं 9 हिजरी को, कहाँ लिखा है कुरान में, इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फत वराइतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा। वफद के वफद अल्लाह के नबी के पास आते और मुसलमान होते। इसमें बड़े वफूद के नाम है, वफद अज़रा, वफद बली, खौलान, सकीफ, ये सारे रबीउल अव्वल शाबान और सारे 9 हिजरी में आए। और फिर 9 हिजरी का एक और बड़ा काम बता दें आप ही, हज फर्ज हुआ, फर्जियत हज हुई। ज़िलहज 9 को हज़रत अबू बकर और हज़रत अली को भेजा गया पीछे से और जाके ऐलान कर दिया गया, बिल्कुल सूरह तौबा की इब्तदाई आयात बरातो मिन अल्लाह वाली से आगे तक। तो वहाँ फिर कुफार को सिर्फ 4 महीने की मोहलत दी गई, ऐलान बरात था। और इसके बाद फिर बाकी सारे माहदे पिछले जो थे ख़त्म कर दिए गए। और उसके बाद फिर सन 10 हिजरी शुरू होता है, वफद कुछ आते हैं उसमें, हौलान, निसान, महारिब, ये सारे मुख्तलिफ वफद हैं जो मदीना में आते थे। असल में ये दीन सीखने आते थे, पूरे ग्रुप्स में आते, बैठते, दीन सीखते चले जाते। और उसके बाद अगर आप 10 हिजरी के शवाल के बाद रमज़ान में आ जाएं, तो ये नबी सल्लम का आखिरी रमज़ान था। इस साल आपने 20 दिन का एतकाफ किया, आमतौर पे 10 का करते थे। 10 हिजरी में ही मुसैलमा कज़्ज़ाब की तरफ आपने ख़त भेजा, जिसने झूठी नबूवत का दावा किया था। और 10 हिजरी में हज्जतुल विदा हुआ, 26 ज़िलक़ादा शंबा के दिन जोहर और असर के बीच में आप मदीना से निकले, बस इससे इर्द गिर्द भी जाते हैं। जुल खुलैफा में आपने क्याम किया, मदीना से बाहर निकले तो फ़ौरन ये जगह आ जाती है, एक रात वहाँ रहे, वहीं से अहराम बांधे। इसको आजकल अब यार अली कहते हैं, ये वही जगह जहाँ मदीना से आते हुए एक मस्जिद बनी हुई है और उम्रे का अहराम बांधा जाता है। फिर इसके बाद जी तुवा में आप रुके और वहाँ क्याम किया एक रात। जी तुवा से मक्का गए 5 ज़िलहज को सुबह की नमाज के बाद। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सनीयतुल उलिया ऊपर की घाटी की तरफ से हजून की बुलंदी पर जो जगह है वहाँ से मक्का में दाखिल हुए थे। आज भी जो लोग शऊर से जाते हैं वो कहते हैं हमने मदीना से अगर आना है तो उसी रास्ते से आना है, क्योंकि अल्लाह के नबी आए थे। और इस तरह मस्जिद हराम में 5 ज़िलहज दुहा के वक्त आप दाखिल हुए। और दरवाज़ा कौन सा था, बाबे बनी अब्द मनाफ, बाबे बनी शैबा भी कहते हैं इसको। फिर मक्का से बाहर क़याम 8 ज़िलहज तक रहा, आप सब जानते हैं अरफात और मीना मुज़दलिफा। नबी सल्लम आपके सहाबा के साथ रहे और मीना में ही रहे। 8 ज़िलहज जुमेरात का दिन दोहा के वक्त मीना को रवानगी हुई, और मीना से अरफा को 9 ज़िलहज को गए तुलू आफ्ताब के बाद। वहाँ वही आप अपनी कुस्वा नामी ऊँटनी पर सवार थे और वहाँ वो अजीम खुतबा दिया जो अपनी जगह एक खूबसूरत खुतबा था। और 9 ज़िलहज को जुमे के दिन जवाले आफ्ताब के बाद आपने खुतबा हज्जुल विदा दिया, अरफे का खुतबा। इसी दिन जोहर से असर तक वकूफ़ अरफा किया जो खड़े होकर दुआएं मांगी जाती हैं, गिरिया उजारी थी। मगरिब तक आप वहीं खड़े होकर दुआएं मांगते रहे और फिर मगरिब के बाद सूरज जब डूबा तो अरफा से रवानगी हुई मुजदलिफा की तरफ। माजबीन के रास्ते से आप वापस गए और फिर मुजदलिफा से मशरे हराम 10 ज़िलहज बरोज शंबा आप सुबह के बाद वहाँ रहे। यहाँ भी रात को आप तस्बीह तखलील और गिरियाजारी के साथ दुआएं मांगते रहे और इस तरह फिर 10 ज़िलहज जब अगली सूरज निकला तो मशरे हराम से मीना की तरफ। फिर अमी जमार वही सारे हज के अरकान आपने इन्हीं दिनों में पूरे किए, खुतबा मीना हुआ 10 ज़िलहज को दोहा के वक्त और फिर कुर्बानी दी आपने और उसके बाद खुतबा दिया। आपने 100 कुर्बानियाँ दी, 100 ऊँटों में से 63 अपने हाथ से 63 और बाकी हजरत अली ने ज़िबा की आपकी तरफ से। फिर उसके बाद अपने बाल कटवाए, आपने सर मुंडवाना और मीना से मक्का 10 ज़िलहज को रवानगी हुई और मक्का में पहुंचकर जोहर से पहले आपने तवाफ़े इफाजा किया और वापस फिर रात मीना में आके गुजारी और मक्का से फिर मीना को आखिर यौम वापसी हुई, यानी वो 3 दिन जो भी थे उनमें आपने मीना में रखा। एक और खुतबा आपने मीना में दिया था 11 ज़िलहज को, अबू दाऊद की रिवायत में आता है। फिर इसी तरह मीना से महसब और अब तक को वापसी और मक्का की तरफ वापसी, फिर यहीं अल्लाह के नबी की मुलाकात कुछ वफूद से हुई और आखिरी वफद जिससे आप अपनी ज़िंदगी में मिले वो वफद नखा नून खा ऐन था। मुहर्रम का तकरीबन मेड आ चुका था, 11 हिजरी शुरू हो गया। यह आखिरी फौजी मुहिम थी जिसका अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया और सफ़र के महीने में 11 हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी का आगाज़ हुआ और 13 दिन की अलालत के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीमारी की शिद्दत के आखिरी 7 दिन हज़रत आयशा सिद्दीका के हुजरे में क्याम करते हैं। ये आखिरी नमाज जो अपने बाद जमात पढ़ी वो अपनी वफात से 5 रोज़ कबल जुमे रात को जोहर की नमाज पढ़ी थी। कल भी मैं किसी से परसों शायद बात कर रही थी कि अल्लाह के नबी तो आखिरी दिन तक भी अपनी ज़िंदगी के नमाज नमाज करते रहे। आज कौन है इतना नेक कि जिसको नमाजें माफ़ हो गई हैं। अल्लाह सबको हिदायत दे। बहरहाल आखिरी बाद जमात नमाज आपने जोहर की पढ़ी थी और 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी चाश्त के वक्त आपका इंतकाल हुआ। पीर का दिन था इसमें कोई शक नहीं, मुत्तफिक अलह बात है, तारीखों में फ़र्क है। यकम भी कहते हैं, 2 भी कहते हैं, 13 भी हैं, लेकिन अगर सब कुछ देखा जाए तो सही चीज़ जो मिलती है वो 12 रबीउल अव्वल वफात है। आज क्या करते हैं लोग 12 रबीउल अव्वल को? खुशी मनाते हैं। अल्लाह ताला हिदायत दे हम सबको। बहरहाल तदफीन आपकी 13 रबीउल अव्वल को होती है, 13 और 14 की दरमियानी रात को। रात के वक्त फावड़ों के चलने की आवाज़ आई थी जिससे हज़रत फातिमा तड़प उठी थी, लेकिन आपको हज़रत आयशा के हुजरे में ही दफना दिया गया। तो ये एक बाप पूरा हुआ, मुसने इंसानियत थे। हकीकत में कि इंसानियत पे बहुत बड़ा एहसान करके गए। इस वक्त शऊर से सोचिए कि अगर अल्लाह के नबी ये सारी जिद्दोजहद ना करते और हमारी तरह अपनी ज़ाती ज़िंदगी के तकाज़ों को निभाते रहते तो क्या आज हम होते? मैं 2 दिन पहले भी ऐसी सोच रही थी कि पता नहीं क्यों ख्याल आया, अगर नबी ना आते तो क्या होता? हम भी किसी बुत के आगे सर टेकते, किसी जंगल में राहे बन के बैठे होते। तो याद रखिए कि अल्लाह के नबी हों या अल्लाह के नबी का छोड़ा हुआ दीन हो, ये बहुत बड़ी रहमत होती है। आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में भी हम मुसलमान तभी बचेंगे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीकों पे चलेंगे। आपका मिशन हमारा मिशन होगा, आपका लाइफस्टाइल हमारा लाइफस्टाइल होगा, वरना याद रखिए कि हम जिस तर्ज ज़िंदगी की तरफ चल पड़े हैं इसमें खैर थोड़ी है और शर ज़्यादा है। जितना बाहर का दबाव आज हम मुसलमानों का अपने ऊपर दिखता है, यकीन करें इससे 10 गुना से ज़्यादा दबाव नबी की ज़िंदगी में था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि वो दबाव को देखकर सीधे खड़े हो जाते थे, हम और कमर झुका देते हैं। अल्लाह से दुआ कीजिए कि हमें दीन इस्लाम की सच्चाई और इसकी खूबसूरती का यकीन हो जाए और हम अपनी नस्लों को वी आर सॉरी टू बी मुस्लिम का मैसेज देकर ना जाएं, बल्कि वी आर प्राउड टू बी मुस्लिम। किस नबी से ताल्लुक है? और ये कोई छोटी बात है। आज आपको पता है दुनिया में जिस शख्सियत पर किताबें लिखी गई, सबसे ज्यादा नबी सल्लम पर। आप सुनेंगे, मुझे लगता है मैंने तजलियात नबूवत में एग्जैक्ट फिगर बताया था कि आज तक नबी सल्लम पर कितनी, मुझे जो अपने जहन से आ रहा है शायद 4,000 हजारों में, ये कितनी सही याद नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा नबी सल्लम के ऊपर किताबें लिखी गई। बड़े बड़े साइंसदान मौजूद हैं। माइकल हार्ट ने आपको नंबर वन पे रखा दी हंड्रेड्स के नाम किताब पे। तो मैं और आप तो उसके सीधे सच्चे डायरेक्ट उम्मती हैं, हमें क्या हो गया? वो नबी इतना प्यारा, वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, वो गरीबों की मदद करने वाला, वो दीन दुनिया के हर मामले को अल्लाह के हुक्म से चलाने वाला, आज वो उम्मत क्यों ठोकरों में है? आज वो क्यों तस्बीह के टूटे हुए दानों पे? इस वक्त कर क्या रही है उम्मत? कहाँ हैं हम? जो मस्जिद में नहीं है वो कहाँ हैं? जो घरों में नहीं वो कहाँ हैं? क्या आज हम फन खेल मेलों में नहीं खो गए? क्या हो गया हमें? यकीन करे दिल खून के आंसू रोता है कि आज उम्मत चली किधर गई। वो आज से 200 साल पहले शायर और अलामा इकबाल जैसे कह गए कि ये उम्मत खुराफात में खो गई। तो आज की खुराफात तो अल्लाह की बना, और फिर हमारे बच्चों को हमसे यही गिला के बोर हो रहे हैं और आप खुश नहीं करते, और समर में कहाँ जाएंगे और छुट्टियां कहाँ गुजारेंगे? इतना कॉम्प्लेक्स दे दिया हमने अपने बच्चों को कि जिंदगी का मकसद फन फन फन। तो अल्लाह ताला में एक बा मकसद उम्मत तैयार करने वाला बना दे। जज़ाक अल्लाह खैर, अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
اللهم صلِّ